ஹரி கிருஷ்ணன். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 17 வர்ஸ் நம்பர் 7, 8, 9 and 10. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாஶ ஸ்ரீ ரூபம் சாக ஜாதம் சகண ரகுநாதம் விதந்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதாத் சகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாஶ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபீஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரே விருஷபானு சூத தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கி ஜெய் ஹோ. சாப்டர் 17 जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग. कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रया यज्ञस्तपस्तथा दानम् ईशां भेदमिमं शृणु. ஆஹாரஸ்த்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி ப்ரியஹ யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா தானம் ஈஷாம் பேதமிமம் ஷ்ருணு. சப்தார்த் ஆஹாரஸ்த்வபி சர்வஸ்ய. ஆஹார் கேட்டே ஹம் போஜன் கோ. தூ மதலப் நிஷ்சய ஹி அப்பி யானி பி சர்வஸ்ய. சர்வஸ்ய யானி ஹர் ஏக். अब इस संसार में बहुत सारे जीव आत्माएं हैं जो कि भौतिक शरीर प्राप्त करके अपने आप को यह भौतिक शरीर मानने लगती हैं और उसी के अनुसार वह आहार को ग्रहण करती हैं। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो जो भी आहार त्रिविधो भवति प्रिया, जो भी आहार वो पसंद करते हैं उनमें निश्चित रूप से यह तीन गुण का प्रभाव होता है। त्रिविधो भवति प्रभाव यानी तीन प्रकार का होता है आहार प्रिय, जो जिसको जो जो प्रिय है वो तीन प्रकार तीन टाइप होती है आहार की, वो भगवान आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रभो, आहार भी तीन टाइप का होता है। और इसके साथ भगवान कहते हैं यज्ञस्तपः तथा दानम्, यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है, तपस्या भी तीन प्रकार की होती है और दान भी तीन प्रकार का होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीन प्रकार के कौन कौन से हैं और इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तेषां भेदम इमं शृणु। तेषां मतलब उनका, भेद मनी अंतर, इमं यानी यह शृणु। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन में क्या अंतर है, क्या भेद है। तेषां भेदम इमं शृणु। अब विभिन्न प्रकार के आहार, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार की तपस्या और डिफरेंट टाइप के दान के विषय में तुम मुझसे सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यज्ञ, तपस्या, दान और आहार यह हर जीव हर मनुष्य को करने होते हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान हमें बताएंगे। अनुवाद देखिए, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। आप उनके भेद को वेद के विषय में सुनो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन क्योंकि हर एक मनुष्य को यज्ञ, तपस्या, दान और आहार करना होता है, तो ये ध्यान से सुनो। अर्जुन पहले भी सुन रहे हैं लेकिन अब भगवान उसको कह रहे हैं तेषां भेदम् इमं शृणु, अब ध्यान देकर सुनो कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए, कैसा यज्ञ करना चाहिए और कैसा दान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होता है, वे सब एक से नहीं होते। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि आप ये मत समझना कि कुछ भी खा लो, कैसी भी यज्ञ कर लो, कैसी भी तपस्या कर लो, किसी को दान दे दो, आपको उससे सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। हमें मनुष्य बनाया है, बुद्धि दी है, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उसको हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं वही हमारे बंधन का कारण बनेगा, है ना। कर्म तो बंधन का कारण बनते हैं, तो हमें वह कार्य करना है कि हम इन बंधनों से छूट सकें। तो श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए बता रहे हैं ये सब एक से ही नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानता क्या है कि हम अपने गुण को समझें और समझें कि मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक समान कर उसमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। कुछ लोग बोलते हैं किसी की भी पूजा कर लो, कैसे भी यज्ञ कर लो, किसी को भी दान दे दो, एक ही बात है ना, एक ही बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते वो तो अज्ञानी है। और आगे कहते हैं ऐसे भी प्रचारिक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कितनी बेवकूफी की बात, कितनी बेवकूफी की है कि आप कुछ भी करके सिद्धि कैसे प्राप्त करते हो। परफेक्शन के लिए अगर कुछ भी करना करके आप परफेक्शन प्राप्त कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो शास्त्र की आवश्यकता क्या है? फिर तो आप मनमाने ढंग से कुछ भी करो। शास्त्र को जब पढ़ना ही नहीं है, जब शास्त्र से कोई शिक्षा लेनी ही नहीं है, जब बुद्धि में शास्त्र की कोई बात डाल के ज्ञान के अनुसार कुछ करना ही नहीं है, तो फिर चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और इतने सारे अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। वेद व्यास जी भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी वेद व्यास जी का के रूप में यहाँ संसार में आकर शास्त्र लिखने की। इसीलिए भगवान ने इसीलिए शास्त्र दिए हैं ताकि जीव शास्त्र को पढ़कर यह डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग अपना चाहिए, कौन सा नहीं अपना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, कैसे यज्ञ करना चाहिए, कौन सी तपस्या करनी चाहिए। यदि ये डिसीजन लेना ही नहीं है तो फिर तो वो तो पशु जीवन हुआ ना। जैसे पशु होते हैं उनको कोई डिसीजन नहीं लेना होता, बस उनको कार्य करना पड़ता है जो भी उनको समझ में आता है। परंतु मनुष्य बने हैं और मार्गदर्शक शास्त्र, शिल रूपा जी आगे बोलते हैं, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते हैं, ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। वो स्वयं भी भ्रांत हैं, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते, वो खुद भी डूबेंगे और हमको भी ले डूबेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार यह जानना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के आहार के विषय में बताएंगे और सबसे पहले श्लोक नंबर 8 में भगवान सत्वगुणी आहार के विषय में बता रहे हैं। वो आहार जो सात्विकी मनुष्यों को अच्छा लगता है उसके विषय में भगवान कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। शब्दार्थ आयु मतलब जो भोजन खाने से आपका जीवन आयु में वृद्धि हो, मतलब कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो खाते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि नहीं होती है बल्कि हमारी जीवन अवधि कम होती है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, लेकिन वो पदार्थ जो खाने से आपकी जीवन की अवधि बढ़े, सत्व बल आरोग्य। सत्व का मतलब होता है जो अस्तित्व प्रदान करते हैं और बल प्रदान करते हैं, बल शक्ति प्रदान करते हैं। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हेल्थ प्रदान मतलब आपका स्वास्थ्य जिससे अच्छा होता है, आपके शरीर जिससे अच्छा होता है, आपके शरीर को शक्ति प्राप्त होती है और इसके अलावा सुख जिसको खाकर सुख प्राप्त होता है, प्रीति मतलब संतोष प्राप्त होता है, प्रीति वर्धना मतलब हृदय में क्रोध भावना नहीं आती है, किसी मतलब ऐसे ऐसा दुखित नहीं होता है के दुखी होकर एक दूसरे को ना क्रोध से खाने लग जाए, ऐसा नहीं। प्रीति वर्धना यानी कि बहुत ही संतोष प्राप्त कराने वाले हैं जिससे हम दूसरों से प्रेम करने लगते हैं, हृदय इतना शांत स्थिरा हृदय शांत हो जाता है, बुद्धि पवित्र होती है तो हमारा हृदय संतुष्ट हो जाता है और प्रीति वर्धना। और वो कैसे होते हैं, रसिया स्निग्धा स्थिरा विद्या। रसिया बहुत रसीले होते हैं, सूखे नहीं होते बारबेक्यू की तरह, ड्राई नहीं होते, रसीले होते हैं। स्निग्धा स्निग्धा मतलब चिकने होते हैं, फैटी जैसे दही माखन चीज इत्यादि। और स्थिराहृदया मतलब स्थिराहृदया मतलब सहिष्णु, जिसको हम खाते हैं तो हृदय सहिष्णु होता है, हृदय को अच्छे लगने वाले होते हैं, बहुत भाने वाले होते हैं। और वो किसको अच्छे लगते हैं, भगवान कहते हैं आहारा सात्विक प्रिया, जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं उनको ऐसे आहार अच्छे लगते हैं। कैसे, अनुवाद देखिए, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। आगे भगवान रजोगुणी व्यक्तियों को जो आहार अच्छा लगता है उसके विषय में कहते हैं, श्लोक नंबर 9 में, मेरे साथ पढ़िए। कट्वम ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्ष विधाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा। कट्वम ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्ष विधाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा। कट्वम मतलब बहुत कड़वा होता है और तीखा होता है। अम्ल मतलब खट्टा होता है। लवण मतलब नमकीन होता है। और अति उष्ण मतलब अत्यंत गर्म होता है, मतलब उसका जो प्रभाव पड़ता है ना शरीर पे, बहुत गर्म गर्म पड़ता है। तीक्ष्ण रूक्ष विदान, तीक्ष्ण होता है चटपटा होता है, रूक्ष शुष्क होता है एकदम सूखा होता है। विदाहिना हृदय को जलाने वाला, पहले कैसे बोला था कि हृदय को बहाने वाला होता है स्थिरारिद्य, और अभी भगवान बोलते हैं विदाहिना जलाने वाला होता है, एसिडिटी पैदा करता है। और आहारा राजस्य ऐसा भोजन रजोगुणी के इष्टा रुचिकर, मतलब रजोगुणी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उससे क्या, ऐसा जब भोजन खाते हैं तो उससे क्या होता है, दुख शोकामय प्रदा, दुख उत्पन्न होता है हृदय के अंदर, शोक उत्पन्न होता है। आमय, आमय का मतलब रोग उत्पन्न होता है, प्रदा यानी उत्पन्न करने वाले होते हैं। पहले जो थे वो जो आहार भगवान ने बताए थे उससे भगवान ने कहा था कि ये सुख प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे, तृप्ति प्रदान करेंगे, हृदय को भाने वाले होंगे। और अभी भगवान क्या कहते हैं, अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। और ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। श्लोक नंबर 10 में भगवान उस भोजन के विषय में बताते हैं जो तामसी लोगों को अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चयत् उच्चिष्टं अपि चामेध्यं भोजनं तामसः प्रियम्। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चयत् उच्चिष्टम् अपि चामेध्यम् भोजनम् तामस प्रियम्। भगवान कहते हैं यातयामम, यातयामम मतलब भोजन करने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, यानी पुराना हो गया हो, 3 घंटे के पहले का बना हुआ हो। और गतरसम, गतरसम मतलब स्वादहीन हो गया हो, सुबह से बनाया हो और शाम को खाना पड़े और उसका बिल्कुल स्वाद भी खत्म हो गया हो। पूती, पूती का मतलब होता है उसमें से दुर्गंध आ रही हो, गंदा बदबू वाला हो गया हो। और पर्युषितम यानी बिगड़ा हुआ, खराब भी हो गया हो, बिल्कुल 3 घंटे पहले बनाया था, स्वाद भी खत्म हो गया है और दुर्गंध भी आ रही है, गंदा हो गया है। च यत, और इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं श्यामन अभी उच्चिष्टम, दूसरे लोगों ने खा के बचा के रखा हो, वो मतलब उसी प्लेट में खा के रखा हो और वो पुराना हो गया हो, बासी हो गया हो, बदबू वाला हो गया हो। अपीच वो भी अमेध्यम, अमेध्यम मतलब अस्पर्श्य, जिन्होंने बनाया हो वो भी मलिन हो और जो वस्तु इंग्रेडिएंट्स यूज किए हो ना वो भी बिल्कुल गंदे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हो। कुछ कुछ ऐसे होते ना चाइनीज वगैरह बनाते हैं उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मतलब इतना गंदा होता है और लोग को इतना अच्छा लगता है। बनाने वाले को कोई विचार नहीं है कि मनुष्य के खाने की वस्तु है अथवा नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं, किसी का ब्लड डाल देते हैं, किसी का फ्लेश डाल देते हैं और पता नहीं कितना गंदा बनाते हैं। और उसको बनाने के बाद यहाँ भगवान कहते हैं चामेध्यम, वो बिल्कुल स्पर्श करने भी योग्य नहीं होता है। और भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तो तामसी लोगों को प्रिय लगता है। अनुवाद देखिए, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन और वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पर्श्य वस्तुओं से युक्त यह भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। मतलब जब हम खा रहे हैं तो हमें ये चीजें जाननी चाहिए कि क्या ये हमें शुद्ध करने वाला है, क्या हमारे शरीर को शक्ति पहुंचाने वाला है, क्या ये खाने से हमारी आयु बढ़ेगी या और भी हम बीमारी हो जाएंगे या रोग लग जाएगा। जीव आज का इतना अज्ञानी हो गया है कि खाने के टाइम पर सिर्फ एक ही बात याद आ रही है कि इससे मेरी जीभा को टेस्ट आएगा अथवा नहीं, ये नहीं सोचता कि ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, केवल ये सोचता है कि इसको खाने से मेरी जीभा इंद्रिय तृप्त हो रही है या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं खाने का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जीभ को संतुष्टि मिल रही है या नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए कि आपकी आयु में वृद्धि होनी चाहिए, आपके मस्तक को शुद्ध करने वाला होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए और उससे जी हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध, व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। पहले लोगों के हम सोचते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन अभी एडवांस होते 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 अपनी बुद्धि को बिल्कुल खत्म कर दिया है जीव ने। वो ये नहीं सोचता आज के हम जो भोजन खा रहे हैं उससे क्या मेरे शरीर के अंदर बल उत्पन्न होगा, क्या मेरे शरीर को पवित्रता प्राप्त होगी, क्या जो हम भोजन खा रहे हैं उससे मेरी आयु बढ़ेगी। लेकिन श्री रूपा जी बोलते पहले जमाने में ऐसे सोचा जाता था कि ऐसा भोजन चुना जाता था जिससे हमारी स्वास्थ्य और आयु बढ़ेगा। और वो कैसा होता था? दूध होता था, व्यंजन होता था, चीनी, चावल, गेहूं, फल और सब्जियां, तरकारियां। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अभी देखो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सत्वगुणी लोगों को वैसे ही प्रिय होते हैं। तो आपको जैसे आप हो वैसा ही भोजन प्रिय लगेगा। मतलब रजोगुणी हो तो आपको ये वाला भोजन पसंद नहीं लगेगा। आपको सत्वगुणी भोजन पसंद लगे इसके लिए आपको सत्वगुणी व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं रजोगुणी ही रहूं और पसंद मुझे सत्वगुणी भोजन आए। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी भगवान ने कहा, स्वयं भगवान बता रहे सत्वगुणी लोगों को ये वाला पसंद लगता है, रजोगुणी लोगों को ये वाला पसंद लगता है, तमोगुणी लोगों को ये वाला पसंद लगता है। आप तमोगुणी होकर सत्वगुणी भोजन को चॉइस कर ही नहीं सकते। आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि आपको वही पसंद आएगा जो सत्वगुणी जो तमोगुणी वालों को लगेगा। तो फिर आपको अपने गुण को देखना है और अपने गुण को तब्दील करना है, चेंज करना है। जब आप अपने गुण को चेंज करोगे तभी आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ आगे हमें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगता है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विकी हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। मतलब कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो शुद्ध होते हैं परंतु उनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता इतना, फिर दूध में या फिर दूसरी चीनी इत्यादि उसमें मिलाते हैं तो वो स्वादिष्ट बन जाते हैं, तब वे सात्विकी हो जाते हैं। और ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदुरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने इंगित किया
कि मांस और मदिरा ये बिल्कुल अस्पर्श्य हैं। अब यहाँ भगवान ने जो बताया था ना, अस्पर्श्य पदार्थ हैं। उचिष्टम अपि चामेध्यम, मतलब अमेध्य शब्द। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मांस और मदिरा ऐसी वस्तुएं हैं जो अस्पर्शी हैं, उनको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो सात्विक भोजन है उनसे बिल्कुल भिन्न है। आठवें श्लोक में जिन स्नग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवत से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यहाँ आठवें श्लोक में हम देखेंगे भगवान ने क्या कहा, रस्या स्निग्धास्त्राहित, रसीले होते और चिकने होते। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर खुलकर बता रहे हैं कि देखो ये मत समझना कि जो चिकनाई बोली गई है यहाँ पर, फेट बोला गया है, वो पशुवत से प्राप्त होने वाली चर्बी है। ये जो जिन स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवत से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता, क्योंकि अगर पशुवत वाला होता तो भगवान यहाँ पर अमेध्य नहीं लिखते, क्योंकि वो तो अस्पर्श्य है। तो यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी प्राप्त होती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले वो वाली चर्बी या फेट नहीं जो कि मार के प्राप्त किया जाता है, वो पशु का जो मिल्क होता है, दूध होता है, उससे जो मक्खन बनता है, पनीर बनता है और उससे जो घी बनता है, उससे जो चिकनाई प्राप्त होती है वह लिखी हुई है वो रस्या स्निग्धा में। यह केवल पशुविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवत चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृत विधि दूध से है। श्री प्रभुपाद जी बोलते जानवरों वाला, ये जानवर जहन के लोग होते हैं ना, पशु बोले श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पाश्विक मनोवृत्ति, मतलब उनकी बुद्धि जानवरों जैसी है, तभी वो सोचते हैं कि जानवर को मार के खाएं, उसी से ही हमें ज्यादा पुष्टि प्राप्त होगी, उसी से ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होगा, उसी से ज्यादा फैट प्राप्त होगा। आवश्यक चर्बी जो होती है वो तो हमें दूध से ही मिल जाती है, दूध से दही बनेगी, मक्खन बनेगा, घी बनेगा, तो उससे मिल जाएगा। पशुवत तो अमानवी है, अमानवी मतलब मनुष्यों को तो ये कार्य करना ही नहीं चाहिए। जानवर जो है वो जानवरों का गोश्त खाते हैं, मनुष्यों को तो क्या खाना चाहिए, मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रोटीन चाहिए होता है, कुछ लोग का ये आर्ग्यू करते ना भाई प्रोटीन प्राप्त होता है इससे, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जानवरों का गोश्त खाकर ही आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो। मटर में, दालों में, पल्सेस हैं, दलिया है, इनसे बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चटपटे होते हैं, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करते हैं। जो बहुत ज्यादा राजसी होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा मसाला लगाया जाता है, भूना जाता है, उसको भून भून कर बनाया जाता है, तो उसे क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। रोग उत्पन्न होने से क्या होगा, आपकी आयु बढ़ेगी या कम होगी। तो ये जो रजोगुणी और तमोगुणी जो भोजन होते हैं वो आपकी आयु को कम करते हैं, लेकिन सत्वगुणी भोजन क्या होते हैं, वो हमारी आयु को बढ़ाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है, खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन। अब यहाँ कोई भी भोजन लिखने के बाद श्री प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में एक बात लिखी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर, अगर भगवान को अर्पित हो गया तो उसमें से सारे गुण निकल जाते हैं, फिर वो सत्वगुणी भी नहीं रहता, रजोगुणी भी नहीं रहता, तमोगुणी तो कैसे रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध सात्विक हो जाता है। तो वो आप 3 घंटे तो क्या, 3 दिन के बाद भी खा सकते हो, 3 महीने के बाद भी खा सकते हो, उसके अंदर कोई खराबी नहीं होगी, वो भोजन शुद्ध सात्विक हो जाता है जो भगवान को अर्पित हो जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैसे तो वो भोजन जो 3 घंटे पूर्व बनाया जाता है वो तो तमोगुणी हो जाता है, तो तामसी वो, लेकिन जो भगवान को अर्पण किया जाता है वो नहीं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकर्षित होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उसमें मुख मोड़ लेते हैं, उससे मुख मोड़ लेते हैं। सत्वगुणी लोग होते ना, आप सत्वगुणी हो आपको तमोगुणी भोजन पसंद ही नहीं आएगा, और अगर आप रजोगुणी हो तो आपको सत्वगुणी भोजन पसंद नहीं आएगा। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उच्छिष्ट खाया जा सकता है, कब? जब वो भगवान को अर्पित करके प्रसाद बन जाता है। हम घर में बनाते हैं वो भोजन होता है, भोग होता है, लेकिन जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और वही प्रसाद जब कोई सतगुरु स्वीकार करते हैं, कोई शुद्ध संत स्वीकार करते हैं, शुद्ध भक्त ग्रहण करते हैं, तो वो महा महा प्रसाद बन जाता है। तो उसको ग्रहण करके हमारा हृदय अवश्य शुद्ध होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। उससे तो बहुत ही शीघ्रता और उत्सुकता के साथ ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है। जैसे भगवान ने कहा उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो उच्छिष्ट जो भगवान और भक्तों के अतिरिक्त किसी ने खाया वो नहीं खाना चाहिए, और वह संदूषण या रोग बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते और ना ही खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल सत्वगुणी आहार खाने के बाद, जो सत्वगुणी भगवान ने बताए हैं कि वो रसमय होते हैं, स्निग्ध होते हैं, स्वास्थ्यप्रद होते हैं, आपको बल प्रदान करते हैं हृदय में और स्थिरता प्रदान करते हैं, केवल वो खाना भी पर्याप्त नहीं है। आप क्योंकि वो भी सत्वगुणी है, अब आप सत्वगुणी भोजन करोगे तो भी तो बंद होगे ना, कोई भी गुण में होगे तो बंद होगे, तो आपको वो भोजन खाना चाहिए जो तीनों गुणों से मुक्त हो। तो वो भोजन कौन सा है? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं सर्वोत्तम भोजन तो वो है जो भगवान को समर्पित करने वाले का उच्चिष्ट, जो भगवान को अर्पित किया जाता है, जो भगवान का प्रसाद होता है। श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल, यानी कि जैसी ये वस्तुएं होती है, तरकारियां होती हैं, आटा, मानी जो वृक्षों से प्राप्त होती हैं, पत्र प्राप्त होते हैं, पुष्प प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं, अनाज प्राप्त होता है, तरकारियां प्राप्त होती हैं, तो ये वस्तुएं आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं। भगवान ने क्या योमाम भक्त्या प्रयच्छते, भक्ति और प्रेम के साथ। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते भक्ति और प्रेम बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर भक्ति और प्रेम नहीं होगा तो भगवान कुछ भी नहीं खाएंगे। आप 56 भोजन लगाओ या फिर 108 भोजन लगाओ, उसमें यदि प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो जिन्हें भगवान, अभी यहाँ भगवान कहते, श्री प्रभुपाद जी कहते निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तु हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। अब ये भी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं खास बात है, उसको याद रखना है कि प्रेम और श्रद्धा से आप कुछ भी खिलाओगे वो भगवान नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते आप कि मैं भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ अंडा अर्पण करता हूँ या चिकन अर्पण करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भगवान को पसंद लगता है वही, जो भगवान ने आदेश दिया वही। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है ग्रहण किया जा सकता है। भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार किया गया हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक यानी बीमारियों को खत्म करने वाला खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करना चाहिए। आपने भगवान को अर्पित कर दिया वो भोजन जो भगवान ने बताया है कि ये वाला भोजन जो है सत्वगुणी जो होता है वही भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और वो जब हम खाते हैं, चाहे कितने ही समय के बाद खाते हैं, तो वो अवश्य हमारे शरीर को रोगों को दूर करता है, स्वाद मिलता है उसमें और वो बहुत रुचिकर होता है और उससे हमारा हृदय पवित्र होता है, जिससे भौतिक मलिनता समाप्त होती है और हम शुद्ध होकर भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। तो भगवान आज हमें इस चैप्टर नंबर 17 में, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग, इसमें हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार आहार, यज्ञ, तपस्या और दान विभिन्न गुणों में होते हैं। मतलब हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो सब इन तीन गुणों के अंदर होता है। हर गुण अपना जो भी गुण होते हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है और हर गुण का एक अलग अलग रिजल्ट होता है। अब जो भी गुण में रहकर कोई कार्य करोगे तो उसका एक रिजल्ट भी निकलेगा। इसलिए कृष्णा एक मनुष्य की जो ये चीफ एक्टिविटीज हैं, क्या यज्ञ, दान, तपस्या और आहार, इस प्रकार ये तीन गुण इनके ऊपर कैसे हावी होते हैं उसके विषय में हमें बता रहे हैं। तो भगवान पहले ये बताते हैं कि आहार किस प्रकार का असर करता है, यानी जो हम खाते हैं उससे हमारे माइंड में कुछ ख्याल आते हैं और इसी उन्हीं ख्याल के द्वारा, यानी जो बुद्धि प्राप्त होती है आहार के द्वारा, उसी के कारण हम अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो कृष्णा इसमें हमें बता रहे हैं कि आहार यानी भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमें आंखें बंद करके अंधों की तरह ये बगैर सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। मतलब ये तय करना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को यह अवश्य देखना चाहिए कि हमें क्या खाना है, हम क्या खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए। तब हमारे मन में आता है कि हमको वेजिटेरियन खाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए। तो कृष्णा हमें सबसे पहले सत्वगुणी आहार के विषय में बताते, वो कहते हैं हमको ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे हम हमारी जीवन की अवधि बढ़े कम न हो और साथ में हमें शक्ति, आनंद, संतुष्टि प्रदान करे। और ऐसे आहार कैसे होते हैं? चिकने, रसीले, हमारे हृदय को संतुष्ट करने वाले। अब जब कोई व्यक्ति एक खास गुण में होता है तो वो उसी के अनुसार आहार पसंद करता है, क्योंकि भगवान ने कहा सत्वगुणी लोगों को ये वाला आहार पसंद लगता है, रजोगुणी वालों को और तमोगुणी वालों। तो अगर कोई सत्वगुण में होगा तो रजोगुणी आहार को पसंद नहीं करेगा, जो रजोगुणी होगा वो सत्वगुणी आहार को पसंद नहीं करेगा और जो तमोगुणी होगा वो रजोगुणी और सत्वगुणी आहार को पसंद नहीं करेगा। तो जीव में हर गुण का एक अलग अलग प्रभाव पड़ता है और वो उसी प्रकार ही कार्य कर सकता है। वो इस कार्य को तब तक नहीं बदल सकता जब तक का उसका गुण ना बदल जाए। कभी कभी हम देखते हैं अच्छे लोग होते हैं, मतलब सोसाइटी में अच्छे होते हैं, फिर भी उन लोगों को वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं लगता है ना। या फिर बड़े बूढ़े हो जाते तो हमको कितना ताज्जुब होता है कि कितने बड़े हो गए, अभी इस उम्र को पहुंच गए अभी तक गोश्त खाते रहते हैं, अभी तक इन लोगों को ये हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है कि हमें अब भगवान की प्रसन्नता के लिए ये छोड़ देना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि इसको वेजिटेरियन क्यों नहीं पसंद है, क्यों गोश्त क्यों खाते हैं? और वो क्या सोचते हैं हमें देखकर बताएं कि ये सिर्फ घास फूस ही क्यों खाते रहते हैं, मतलब ये क्यों नहीं इनको ये यंग हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए, संतुष्टि देनी चाहिए अपने जीवा को, तो ये क्यों खाली यही सब्जियां खाते रहते हैं? तो हर व्यक्ति अपने गुण के अनुसार ही कार्य कर सकता है, वो गुण को छोड़कर दूसरा कार्य नहीं कर सकेगा। अगर हमको अपना व्यवहार बदलना होगा तो सबसे पहले अपने गुण को चेंज करना होगा, सिर्फ उसी तरह से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। मतलब अगर आपका आहार शुद्ध होना चाहिए है ना, और यज्ञ करने से हम जो आहार खाते हैं वो आध्यात्मिक हो जाता है, और ऐसा आहार खाने से क्या होता है, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, हमारी बुद्धि के अंदर जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो फायर टिश्यूज हैं, वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं, और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो वो व्यक्ति मुक्ति के विषय में सोचता है। तब तक जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि में ये बात आएगी नहीं कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है ना। तो ये सब किससे स्टार्ट होता है, आहार से। मतलब सब कुछ हमारी आहार की चॉइस पर डिपेंड करता है, और अगर हम शुद्ध आहार करते हैं तभी हमारा जीवन पवित्र होता है, याददाश्त तेज होती है, और फिर हम मुक्ति के लिए ग्रंथि ना विप्रमोक्ष, मुक्ति के लिए हम तभी सोच सकते हैं, क्योंकि यदि आहार शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो स्मृति भी नहीं होगी, और फिर हम कभी भी अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में सोचेंगे नहीं, केवल ये सोचेंगे कि इस भौतिक जगत में कैसे आनंद लें, कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, कि इस भौतिक और अशाश्वत दुनिया में ही आनंद मनाने के विषय में सोचेंगे। अगर हमें इससे आगे कुछ सोच सकते हैं तो तभी यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है, यही तो मानव जीवन का मकसद है कि हम इस भौतिक जाल से, इस भौतिक माया से बाहर निकलें, अन्यथा तो हम पशुओं जैसा जीवन ही बिता रहे हैं। इसलिए हमें सदा सोच समझकर आहार ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें हमेशा सत्वगुणी आहार खाना चाहिए। सत्वगुणी आहार कौन सा है, जो प्रभुपाद ने बताया, दूध, सब्जियां, आटा, गेहूं, चावल और फ्रूट्स, इस भगवान ने कहा रस्या स्निग्धास्त्रा। तो हमें यही इस तरह के प्रसाद भोजन खाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी ने बताया स्निग्धा, जो बताया कि भोजन चिकना होना चाहिए, फेट होना चाहिए, चिकनाई होनी चाहिए, तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा क्रूरता से जो जानवरों को मारकर चर्बी प्राप्त हो जाती है वो चर्बी हमारे इस मनुष्य जीवन को के लिए सही नहीं है, मतलब उसको बरकरार रखने के लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमें आवश्यक फेट, आवश्यक चर्बी तो दूध से और घी से और चीज, पनीर से इत्यादि से मिल सकती है। तो कोई बहस कर सकता है कि गोश्त में, जो जानवर का गोश्त होता है उसमें बहुत सारा मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, और इसकी जांच करें तो हमें पता चलेगा कि हमें सारे फ्रूट्स में, सब्जियों में, दूध में और दालें, मटर इत्यादि में वो सारे मिनरल्स और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्रोटीन हमें दाल से, चने से, ये सब पे मिल जाती है। तो अगर हमें वास्तव में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें सावधानी रखनी है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वास्तव में भक्तों यही चीजें इंसान को इंसान बनाती है, वरना जानवर और इंसान में अंतर ही क्या रह जाता है। उसके उपरांत भगवान ने राजसी भोजन के विषय में बताया कि जो बहुत खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं, तीखे होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नमक हो, मिर्च मसाला, गरम, और दुख शोका भय प्रदा, जो हृदय को दुख और शोक प्रदान करते हैं। वास्तव में नॉन वेजिटेरियन पकाने के लिए बहुत बहुत मसालों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसको, क्योंकि उसमें अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, उसको पकाने के लिए बहुत सारी चीज, नमक मिर्च इत्यादि का उसमें मिश्रण करना पड़ता है। तो ऐसा भोजन राजसी लोगों को पसंद लगता है, और तामसी लोगों के लिए भगवान ने कहा जो 3 घंटे पहले बताया जाता है। आज के युग में ऐसा संभव ही नहीं है कोई 3 घंटे से, मतलब अब क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, गांव में काम करते थे, खेतों में कृषि करते थे और उनकी पत्नी या माता लेके आती थी भोजन गरम गरम बना के। लेकिन अभी तो सुबह को बेचारे निकलते हैं टिफिन लेके और जब समय मिलता है तब खाते हैं। तो फिर ये संभव नहीं है कि हम उसी टाइम पर, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसका भी सॉल्यूशन बताया कि अगर हम उस भोजन को भगवान को अर्पण करते हैं तो प्रसाद के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। तो जब भक्त जब भी बाहर भी खाता है तो प्रसाद खाता है, तो तीन घंटे क्या तीन दिन भी पुराना होता है तो उस वो फिर भी शुद्ध ही रहता है। और जब वो झूठा, यहाँ पर जैसे भगवान ने कहा झूठा नहीं खाना चाहिए, तो श्री प्रभुपाद ने हमें बताया कि यदि भगवान उसे स्वीकार करते हैं या फिर भगवान के भक्त स्वीकार करते हैं तो महा महा प्रसाद। तो इस प्रकार हम अपनी चेतना को सही गुण में रख सकते हैं, क्योंकि यदि चेतना नीचे गिर जाएगी, हमारी चेतना यदि शुद्ध नहीं होगी तो हम आध्यात्मिकता में कभी भी उन्नति नहीं कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ साइंटिफिक रीजंस को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए शाकाहारी भोजन अधिक लाभदायक है या मांसाहारी। और ये शास्त्र में नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग क्योंकि हमारे शास्त्र को नहीं जानते हैं तो ये साइंटिफिक रीजंस हैं यहाँ पर कि हमारे लिए, वैसे हमारे लिए तो ना शास्त्रों की बात पर्याप्त है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए भक्तों को यह पता होना चाहिए कि ये ना केवल शास्त्र की बात है बल्कि साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती है। तो दूसरों को कन्विंस करने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक आर्ग्यू भी करने पड़ते हैं, इससे हम उनको कन्विंस कर सकते हैं और साथ में हमारी अपनी श्रद्धा भी बढ़ती है। तो अब हमको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में न्यूट्रिशन वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर पहले हम वेजिटेरियन पदार्थ के विषय में बताते हैं, ठीक है, कि वेजिटेरियन पदार्थ में कितने कैलोरीज होते हैं और उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे नॉन वेजिटेरियन से। हर 100 ग्राम काजू में 596 कैलोरीज होते हैं, 100 ग्राम काजू में 596, 100 ग्राम कोकोनट में 444 कैलोरीज होते हैं, 100 ग्राम ग्राउंड नट में 549 और 100 ग्राम चीज में 348 और 100 ग्राम घी में 900 कैलोरीज होते हैं। तो ये शाकाहारी भोजन जो है उसमें मतलब 100 ग्राम में अगर हम देखें तो सब में 400 से 500 ग्राम कैलोरीज होते हैं। और अब हम नॉन वेजिटेरियन के साथ इसका कंपेयर करते हैं, 100 ग्राम एग में 173 कैलोरीज होती हैं, फिश में 91 कैलोरीज, मटन में 194 कैलोरीज और बीफ में 114 कैलोरीज। कितना डिफरेंस है यहाँ पर। ऊपर हमने जब देखा वेजिटेरियन में सब 100 ग्राम में 400 और 500 तक का ना कैलोरीज प्राप्त हो रही थी, मतलब हम इसमें साफ फर्क देख सकते हैं, 300 से ज्यादा कैलोरीज का फर्क है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई मीट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ये सब बकवास है। वास्तविकता तो ये है कि केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन से हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त मांस आहार करने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो मनुष्य के लिए नेगेटिव होते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा चिकन फ्लू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू। कभी आपने सुना किसी वेजिटेरियन के साथ जैसे टोमेटो फ्लू, पोटेटो गुनिया, ऐसा कभी होता है? मतलब जो ये नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो भी सिर्फ मांसाहारियों के लिए होते हैं। और यदि सत्वगुण आहार करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, मन शांत रहेगा, क्रोध भी नहीं आएगा और हृदय एकदम संतुष्ट होगा। रजोगुणी आहार करेंगे तो भगवान कहते हैं उससे बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न होगा, हवस उत्पन्न होगी, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो ये सब फिजिकल पॉइंट्स हैं इसके। और अगर कोई यह प्रश्न करता है कि अगर कोई वेजिटेरियन भी होता है तो वो प्लांट्स की हत्या ही कर रहा है ना, मतलब क्योंकि वृक्ष भी तो जीवित है। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि पौधों को मारना या पौधों फल फ्रूट और सब्जियों इत्यादि को खाना और जानवरों को मारना, इसमें बहुत भेद है। जानवरों की हत्या और वेजिटेरियन आहार, इसमें बहुत भेद है। पहले तो जानवरों की चेतना वृक्षों से बहुत एडवांस है। अब जाहिर है मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है जीवस्य जीव भोजनम, कि जीव ही जीव का भोजन है, क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ना, कोई फल सब्जियां इत्यादि चाहिए। अब जो निर्जीव वस्तु है जैसे कंकर पत्थर रेती ईंट उठा के तो नहीं खाएंगे ना, खाने के लिए मतलब जीवित वस्तु ये लिविंग एंटिटीज ही चाहिए होती है, फल सब्जियां इत्यादि। तो जैसे जानवर होते हैं उसको यदि मार के खाया जाता है तो वो मांसाहार होता है, लेकिन उसी जानवर में से जब दूध निकाल के पिया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसी तरह वृक्ष को कभी काटा नहीं जाता सब्जी को, सब्जी खाने के लिए या फल फ्रूट्स खाने के लिए। वृक्ष फल तो वृक्ष का बनाई खाने के लिए है, और इसके अतिरिक्त जो सब्जियां हैं वो तो मतलब ऐसे है जैसे जानवर का दूध निकाल देते हैं फिर भी जानवर सुरक्षित रहता है, उसी तरह वृक्ष का फल निकालते हैं फिर भी वृक्ष को तो नहीं काटा है ना, वृक्ष की हत्या तो नहीं की है। तो ये केवल आर्ग्यू है कि फिर है ना आप लोग वेजिटेबल्स खाते हो उसमें भी प्राण होते हैं। और वास्तव में भक्तों सबसे मुख्य बात तो ये है कि पशु हत्या से हमें बहुत बड़ा कार्मिक रिएक्शन भुगतना पड़ता है, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक कार्य का विपरीत परिणाम मिलता है। जब हम पशु हत्या करते हैं तो उसका बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर हम किसी पशु की हत्या करते हैं तो अगले जन्म में हम पशु बनेंगे और वह पशु हमारी गर्दन काटेगा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि हम किसी को दुख देते हैं तो हम भी दुख भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही कारण है कि इस युग में हर जगह हर देश में बहुत सारे झगड़े फसाद और जंगे होती रहती हैं। और यदि हम इसी प्रकार पशु की हत्या करते रहेंगे और मासूम पशुओं को मारकर अपनी जिह्वा की तृप्ति करते रहेंगे तो प्रकृति हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। प्रकृति की ऐसी योजना बन जाएगी कि हम स्वयं ही खुद को मारना शुरू कर देंगे। जैसे युद्ध होते हैं मनुष्य मनुष्य को मारता है, और प्रकृति में कुछ ऐसी आफतें आती हैं जैसे भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, वायरस आते हैं, प्रकृति कहती है सब मर जाओ एक साथ। एक भूकंप में हजारों लोग मर जाते हैं, सुनामी में लाखों लोग की मृत्यु हो जाती है, हर जगह मृत्यु का भय लगा हुआ है। और आजकल लोग इतने क्रूर होते जा रहे हैं कि पशु की बात तो छोड़िए मनुष्य की हत्या करने के विषय में भी एक बार नहीं सोचते। इतने आतंकवादी इतने हत्यारे हो गए हैं कि अब तो मंदिरों और मस्जिदों में भी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि धार्मिक स्थानों में भी हम सुरक्षित नहीं है। ये सब दहशत ये सब आतंक हर जगह है। हमें अपने घरों में ऑफिसों में हर जगह सिक्योरिटी चाहिए होती है। वास्तव में इसका कारण हिंसा ही है। और यदि हम शांति से जीना चाहते हैं तो हमें इन मासूम पशुओं की हत्या बंद करनी होगी। और क्योंकि पशुओं को भी जीने का पूरा अधिकार है, भगवान ने हर जीव को एक निर्धारित समय देकर संसार में भेजा है, और जब वो पूरा अपना निर्धारित समय पूरा करता है तो उसको आगे उन्नति करने में सहायता मिलती है। लेकिन यदि हम किसी पशु को जैसे इस संसार में अगर 30 साल रहना है और वो 20 साल में ही उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको हत्या कर दी गई, तो वो 10 साल जो उसके वापस हैं तो वापस से उसको पशु का जन्म लेना पड़ेगा और उसी पशु में उस जीवन में उसको गुजरना। हो सकता है नेक्स्ट जीवन उसका बहुत उससे उन्नत होगा, लेकिन हमारे कारण उसकी उसका जीवन जो है उसकी उन्नति रुक जाती है, तो उसकी बदली में हमें भी पशु योनि प्राप्त होती है। तो मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि पशु केवल हमारी तृप्ति की सामग्री है, केवल हमारी जिह्वा की तृप्ति के लिए है, तो कल हमको भी उनकी जिह्वा की तृप्ति की सामग्री बननी पड़ेगी। कल हमको भी किसी तेज धार वाले हथियार से काट दिया जाएगा। तो यहां पर हमने मांस आहार की चर्चा इसलिए की क्योंकि मांस आहार रजोगुणी आहार है। कुछ लोग बोलते ना हम बोलते ना कि ये रजोगुणी आहार है नहीं खाना, तो बोले रजोगुणी है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ तो वो आगे बताएंगे भगवान। लेकिन
यहाँ पर हमें ये समझना है कि आहार चाहे सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, उसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन उससे भी विशेष बात यह है कि केवल सत्वगुणी आहार करना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सत्वगुणी आहार से ये तो होता है कि हम अधिक से अधिक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, परंतु अगर हम ऐसी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते तो फिर सत्वगुणी आहार का क्या लाभ है ना। अगर आप कोई बोलता है कि मैं सत्वगुणी भोजन खाता हूँ, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति में उन्नति नहीं कर रहा, तो फायदा क्या होगा। वो तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, किसी श्री प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी मैं भक्त हूँ क्योंकि मैं कभी भी मांस आहार नहीं करता, मैं केवल वेजिटेरियन हूँ। तब श्री प्रभुपाद जी ने उसको सामने एक बंदर को दिखाया, बोला ये बंदर भी वेजिटेरियन है, ये कबूतर भी वेजिटेरियन है, केवल वेजिटेरियन बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी जिंदगी के वास्तविक लाभ को प्राप्त करने के लिए भक्त बनना है। और भक्त वास्तव में सत्वगुणी आहार का मतलब ये नहीं है कि आहार अच्छा होना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं परमपुरुष भगवान ने आज आहार के विषय में बताया है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान हमें ये कह रहे हैं कि ये आहार खाने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, ये खाना खाने से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। मतलब कोई भी आहार अगर हम खाते हैं तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है। भगवान यहाँ पर हमें आहार की साइंस बता रहे हैं कि सत्वगुणी आहार से हम आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अग्रसर होते हैं। सत्वगुणी आहार हमें आत्म साक्षात करने में सहायता देता है और धीरे धीरे सत्वगुण को भी पार करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हम सत्वगुण में ही रह जाएंगे। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं 14.18 में भगवान ने बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थो मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। अगर सत्वगुणी कार्य करेंगे तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, रजोगुणी कार्य करेंगे तो मध्य में रहेंगे, और तमोगुणी कार्य करेंगे तो नीचे के लोकों में जाएंगे। लेकिन ऊपर नीचे भटकना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमें इन समस्त गुणों से ऊपर उठना है। मतलब सत्वगुणी आहार भी वास्तविक लाभ प्रदान नहीं करेगा, हमें आहार को समस्त गुणों से ऊपर उठाना है। और केवल वही आहार जो आध्यात्मिक होता है, जो सारे गुणों को पार कराने में सहायता करता है, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, हमें उसको प्राप्त कराने में हमारी सहायता करता है कि हम तीनों गुणों से पार करके भगवत प्राप्ति करें और जन्म मृत्यु के चक्कर से बचें, केवल वही आहार करना चाहिए। इसे भगवान पहले बता चुके हैं कि 3.13 में भगवान ने बताया, यज्ञ शिष्टाश्ना संतो मुच्यन्ते सर्व खेल विषय भुंजते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। अगर आपको समस्त किलबशों से, समस्त भौतिक गंदगी से, समस्त अपराधों से, समस्त पापों से मुक्त होना है तो उसका एक ही तरीका है, यज्ञ शिष्टाश्ना संतो के यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ग्रहण करो। और भुंजते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, यदि तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाओगे तो फिर तुम्हें घोर अपराध को भोगना पड़ेगा। निश्चित रूप से पाप खाता है वो व्यक्ति जो कि भगवान को प्रसाद अर्पण करके नहीं खाता। इसे भगवान ने बताया 9.27 में, यत करुषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पण। कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, यत करुषि जो आप कार्य करते हो, यदश्नासि जो आप खाते हो, यज्जुहोसि और जो आप अर्पण करते हो, ददासि अगर कुछ दान देते हो, तत् कुरुष्व मद अर्पण जो तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पण करो। तो पूछा अर्जुन ने, इससे क्या लाभ होगा, तुम्हें अर्पण क्यों करूं कृष्ण। तब भगवान कहते हैं 9.28 में, शुभा शुभ फलई रेव मोक्ष से कर्म बंधन। तुम्हारे जीवन में आज जितने भी बंधन है वो सब कर्मों के अनुसार है, और अगर तुम कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हो, शुभ अशुभ फलई रेवम, जितने भी शुभ और अशुभ फल हैं उन समस्त फलों से मुक्त होना है, मोक्ष से कर्म बंधन, और कर्मों के बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अगर तुम मुझे अर्पण करके उसके बाद खाओगे तो
इस तरह से तुम कर्म के बंधन से तथा उसके शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। विमुक्तो माम उपैशसि, और जब मुक्त हो जाओगे तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो भक्तो, कृष्ण प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, हमारी जिह्वा जो है वो अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अन्य इंद्रियों को बहुत सरलता से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिह्वा से केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, और प्रसाद केवल वही अर्पण करना है जो शुद्ध हो, जो कृष्ण को अच्छा लगता है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अवश्य कृष्ण को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।